ओम शांति। सभी पार्ला निवासी वर्तमान समय है मधुबन निवासी, और हम सभी का परमानेंट एड्रेस भी है मधुबन। तो ब्राह्मणों को तीन चीजें बहुत प्रिय हैं। कौन सी तीन चीजें? बाबा, मधुबन और मुरली। मुरली, मुरली हमारा जीवन है, मुरली हमारा श्वास है। आप सबको पता है हम रोज मुरली सुनते हैं, आप सभी सुनते हैं ना रोज मुरली। दिन की शुरुआत होती है मुरली से, लेकिन उस मुरली को हम तक पहुंचाने वाले, मुरली को वरदान सार और प्रश्न उत्तर निकालने वाले, ज्ञान का चिंतन करके मनन करके वो हम तक कौन पहुंचाते पता है? सभी को पता नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे नए हैं, तो हमारे भ्राता, आदरणीय भ्राता राजू भाई, तो हम इनको सिर्फ राजू भाई नहीं कहते हैं, इनको कहते हैं मुरली वाले राजू भाई। तो बाबा का टाइटल भ्राता जी को मिल गया है। तो इतनी मेहनत करते हैं, अब तालियां तो बजा सकते हैं। हमको मुरली आज शशि बहन ने बताया ना सुबह, बाबा हलवा तार करके देता है, तो भाई साहब हमको हलवा गरम गरम तार करके देते हैं और हम उसको खाली, हमको उसको धारण करना है बस। भ्राता जी ने बहुत सारे क्लासेस कराए हैं और देश विदेश में भट्टियां कराने जाते हैं। ज्ञान के जो चिंतन है बहुत अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन धारणा के पॉइंट्स भी इनकी बहुत गहरी होती है। मैं अपना एक अनुभव सुनाना चाहूंगी। हमारी भट्टी में, टीचर्स भट्टी में एक बार भाई साहब ने कराया था बहुत अच्छा, बिगड़ी को बनाने वाले। आप अपने आप को समझो बिगड़ी को बनाने वाला हूं, क्योंकि बिगड़ी तो बहुत होनी है दुनिया, तो मैं कौन हूं उसको सुधारने वाला। तो बहुत अच्छे पॉइंट ऐसे लगी, मतलब बहुत सारी बातें आएंगी तो हम उसको कैसे सुधारे, कैसे करें। गहराई की पॉइंट्स होती है धारणा की। आप लोगों को अगर कोई भी आपके पुरुषार्थ में कोई रुकावट है, कोई अटकाव है, कोई रोला है, आप प्रश्न से भी पूछ सकते हैं। और साथ साथ हम भाई साहब का हमारी भट्टी में यहाँ पर स्वागत करते हैं। आपने साकार मामा बाबा की पालना भी ली है, तो उसके अनुभवों से भी हमको लाभान्वित करेंगे। सुनते हैं राजू भाई से, नहीं मुरली वाले राजू भाई से।
ओम शांति। बाबा, मधुबन और मुरली, तीनों चीजों से हम सभी ब्राह्मणों का जिगरी प्यार है। बाबा ने हम सबको नया जन्म दिया, मधुबन में पालना मिली और मुरली से हम सबको श्रेष्ठ पद प्राप्त होता है। तो बाबा, मधुबन, मुरली एक एक ब्राह्मण बच्चों के श्वास श्वास में बसता है। और ड्रामा में बाबा ने मुझे मुरली से खेलने का वरदान दे दिया, क्योंकि मैं तो बहुत छोटे उम्र में मधुबन में आया, 15-16 साल की उम्र थी और पढ़ाई से ही आया था, स्कूल से ही। तो यहाँ आकर के मधुबन, मधुबन के बाबा और मधुबन की दादियों का जादू लगा और यहीं रह गया। फिर मैंने खुद ही इच्छा जाहिर की मैं यहाँ पर कुछ सीखूं, तो टाइप सीखी और टाइप के साथ साथ शर्त ये थी कि सिंधी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि बाबा की राइटिंग, दादियों की राइटिंग पढ़ने के लिए उस भाषा का ज्ञान जरूरी है। तो इसलिए पहले पहले मुझे सिंधी सीखने का ही सौभाग्य मिला और साथ साथ टाइप भी सीख ली, तो दीदियों के, दादियों के अंग संग रहने का सुअवसर प्राप्त हो गया। क्योंकि बाबा के अव्यक्त होने के बाद मनमोहिनी दीदी को विशेष यज्ञ की पूरी कारोबार सौंपी गई। बाबा ने साकार में ही मम्मा के अव्यक्त होते दीदी को अपना साथी बनाया था। तो दीदी बहुत ट्रेंड थी, लेकिन स्कूल की पढ़ाई उन्होंने भी नहीं की थी, कभी भी हिंदी में साइन नहीं किया दीदी ने। दीदी को जिन्होंने देखा है हाथ उठाओ। बस स्नेहल ने नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा। अच्छा, चार पांच ही हैं। अच्छा, तुमने भी नहीं देखा। दीदी की बहुत अच्छी पालना मुझे 11 वर्ष तक मिली। 71 से 83 तक दीदी के साथ बहुत नजदीक रहा, क्योंकि जितनी बाबा पत्र व्यवहार करते थे, पोस्ट लिखते थे, तो बाबा के अव्यक्त होने के बाद सबसे बड़ी ड्यूटी ये थी, सभी सेंटर्स के जो पत्र आते थे उन पत्रों का उत्तर देना। तो दीदी ने मुझे अपना साथी बनाया, क्योंकि मुझे सिंधी सीखने का जो भाग्य मिला, तो दीदी कहती थी कि तुमने अगर मेरी राइटिंग पढ़ ली ना तो सब कुछ पढ़ लोगे। तो दीदी की राइटिंग बड़ी वंडरफुल थी, क्योंकि लौकिक में स्कूल में तो पढ़ी नहीं थी, यहीं लिखना सीखी थी। और शॉर्ट हैंड में परमात्मा लिखना है तो पी लिख दिया, ड्रामा लिखना तो डी लिख दिया, आत्मा लिखना तो ये लिख दिया। तो ऐसे दीदी की शॉर्ट हैंड और सिंधी मैं दीदी के साथ रह करके पढ़ना सीख गया। और जब सीख गया तो दीदी क्वेश्चन बड़े अच्छे निकालती थी मुरली से। दादी जी मुरली सुनाती थी पढ़ करके, और दीदी उनके प्रश्न, सारी मुरली को प्रश्न में चेंज कर लेती थी। और जब क्लास मुरली पूरी होती थी तो सभी पूरे क्लास से कहती थी अब मेरे साथ बैडमिंटन खेलना है, मैं प्रश्न फेंकूंगी और आपको उत्तर देना है, और जो पास हो जाएगा उसको डबल टोली, और जो फेल हो जाएगा उसकी टोली बंद। बड़ी चिटचैट होती थी, छोटा हाल था, ये तो कुछ था ही नहीं। तो छोटे हाल के अंदर हम सभी मधुबन के ही होते थे, पार्टी अगर 50-60 आ जाती थी तो कहते थे बहुत बड़ी सीजन आ गई, बहुत बड़ी सीजन, 50-60 लोग आ गए तो कहाँ बैठेंगे। और रहते भी हम थे केवल 40-50 भाई बहने, बहुत छोटा सा परिवार था। मुझे टॉपिक इसलिए दिया है यही शायद, यज्ञ रक्षक, यज्ञ स्नेही सहयोगी, आज की टॉपिक क्लास की ये है, इसलिए मैं यज्ञ के विषय में आपको बहुत सी बातें सुनाऊंगा। आपने सुनी होंगी, कोई कोई ने, लेकिन अधिकतर सब नए बाबा के ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने दीदी की पालना तो नहीं ली है, दादी की अच्छी मिली है, क्योंकि दादी तो 2007 में अव्यक्त हुई। दादी को भी जिन्होंने नहीं देखा वहां तो उठाओ, ऐसे भी हैं। अच्छा, बहुत सारे नए बच्चे हैं बाबा के, क्योंकि दीदी दादी की जोड़ी को कहते थे शरीर दो हैं आत्मा एक है। इतना आपस में समन्वय था कि अगर हमने दीदी से कोई बात की और उसी समय दादी के पास अब हम गए तो दीदी दादी को पता चल जाता था, तुम ये दीदी से बात कर लिया ना। अच्छा, दीदी से बता दिया फिर दादी के पास क्यों आए हो? जो दीदी का निर्णय वो दादी का निर्णय, अलग नहीं होता। तो दोनों का इतना अच्छा तालमेल था और दोनों ने मिलकर के जो यज्ञ को आगे बढ़ाया बाबा के अव्यक्त होने के बाद, पूरे विश्व में छा गए। बहुत एकदम एक होकर के सबको मिला करके इतने बड़े परिवार को, इतने बड़े संगठन को पालना देते हुए दीदी और दादी ने पूरे विश्व के अंदर बाबा को खूब प्रत्यक्ष करने की मेहनत सेवा की। क्योंकि बाबा के अव्यक्त होते ही सबसे पहले बाबा के महावाक्यों को साकार रूप देने के लिए पहले ग्रुप में दीदी दादी ने ही 6 भाई बहनों का ग्रुप तैयार करके लंदन भेजा 72 में। और 72 में सबसे पहले लंदन का केंद्र खुला और वहां से ही सेवाओं का विस्तार हुआ। सभी सेवा केंद्र जितने विदेश में बने वो लंदन बीच पड़ा, और लंदन से फिर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अलग अलग स्टेट्स में सेवा केंद्र खुलना शुरू हुए। तो 72 से विदेश सेवाएं शुरू हुई और दीदी दादी चक्कर लगाती रही सब जगह पर ऑलराउंड बन करके। तो दीदी के पास जितने पत्र आते थे, जितनी पोस्ट आती थी, जो कुछ होता था, मुझे उनके साथ बैठ करके लिखने, उत्तर देने का चांस पहले पहले मिला। और फिर धीरे धीरे पूरी डिपार्टमेंट 1976 में मुझे मुरली की डिपार्टमेंट मिल गई, क्योंकि भाई जो टाइप करता था वो किसी कारण से वापस चला गया, घर गया, और उसके बाद ये डिपार्टमेंट मुझे बाबा ने, दादियों ने सौंपी। तब से लेकर के बाबा की मुरली कितनी बार रिवाइज हुई, कितनी बार हम सब ने साकार में अव्यक्त को देखा, अनुभव किया, क्योंकि पूरी पूरी रात बाबा की पालना हम सबको मिलती थी। और मेरी ड्यूटी थी कि बाबा जितना भी बोलते हैं, जितनी भी वरदान एक एक बच्चे को देते हैं, वो सब मैं लिखता था, हाथ से लिखता था, टेप मशीन नहीं थी उस समय, टाइप भी नहीं करता था रात को। तो बाबा अगर 7 बजे 6:30 बजे शाम को आते थे तो सुबह 8 बजे तक 7 बजे तक 12 घंटा 13 घंटा एक एक बच्चे को पर्सनल मिलते थे। इस हाल में भी बाबा का काफी पार्ट चलता। और फिर जब बाबा ओम शांति भवन में आए तो बहुत बहुत दिन रात मेहनत की बाबा ने। तो बाबा के जितने महावाक्य के उच्चारण होते थे वो सब मैं नोट कर लेता था, और फिर वो टाइप करके तैयार करके दीदी दादी को सुना करके उसको मुरली का रूप दे करके फिर सेंटर्स पर भेजता था। और ऐसे ही फिर कुछ नवीनता होनी चाहिए कि मुरली रिवाइज हो रही है, तो इसके लिए इसके बीच में प्रश्न उत्तर डालना, इसमें साल लिखना, इसमें धारणा की बातें करना और वरदान निकालना, स्लोगन निकालना, ये ड्यूटी फिर धीरे धीरे दादियों ने मुझे सौंप दी। तो बाबा के रत्नों से खेलने का सौभाग्य मिला और बाबा का यज्ञ जो दिन प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त हुआ, क्योंकि जब बाबा ने यज्ञ की स्थापना की तो एक बहुत छोटे से क्लास रूम में, अपने हाल में, घर के रूम में गीता पाठ शुरू किया, और उस गीता पाठ से लेकर के धीरे धीरे वृद्धि हुई। पहले हैदराबाद के अंदर 1000 भाई बहनों का संगठन बन गया 2 साल के अंदर। और उसका कारण ये था कि जो भी बाबा के सत्संग में आते थे उनको कोई न कोई दिव्य अनुभव होते थे, साक्षात्कार होते थे, जिसके कारण बहुत बड़ा संगठन तैयार हो गया। लेकिन जब संगठन में धारणाओं की बातें आई, जो बाबा के महावाक्य निकले और आने वालों ने उसको जीवन में उतारना शुरू किया, तो बहुत बिघन आने लगे, घर घर में झगड़े शुरू हो गए। और झगड़ों के कारण फिर संस्था के अंदर बाबा मम्मा के ऊपर भी बहुत लोग बिगड़ने लगे, रुकावटें डालने लगे। तो बाबा ने क्या किया, अपनी संस्था को ट्रांसफर करके अपने आप को कराची ले आए हैदराबाद से 2 साल के बाद। और जब कराची आ गए तो जिनको लगन लग गई थी, जो पक्के थे, जिनको निश्चय था कि भगवान आ गया है और मुझे भगवान के यज्ञ में समर्पित होना है, वो सब अपने घर बार को छोड़ छोड़ करके हैदराबाद से कराची आ गए। फिर कराची में भी बहुत थोड़ा समय हंगामा चला, क्योंकि सब ने सोचा कि हमारी अंडर एज कन्याएं हैं, उनकी नोटिस आने लगी, 16 साल के अंदर की हैं, लेकिन सबकी एज तो बड़ी थी, फिर भी नोटिस देने के लिए उन्होंने, परिवार वालों ने उनको अंडर एज बता करके उनको हाईजैक करने लगे, उठा के ले लेने वापस जाने लगे। तो वो खेल भी 1-2 साल और चला कराची में भी, लेकिन उसके बाद फिर बाबा ने इनकी अच्छी भट्टी बनाई, 300-400 जो बहने भाई इकट्ठे आए उनको अच्छे अच्छे अनुभव कराए, यज्ञ की ये नींव, ये पिल्लर्स को मजबूत किया। क्योंकि उस समय हिंदुस्तान पाकिस्तान का बहुत हंगामा था, बहुत खून खराबा हो रहा था, और बाबा ने इनको भट्टी, इसीलिए इसका नाम दिया भट्टी, कि तुम तपस्या करो और अंदर रहो, अंदर रह करके एक स्थान पर, बाहर का कोई संसार समाचार की लेन देन नहीं, क्या हो रहा है कोई को कुछ पता नहीं। तो पूरा पार्टीशन हुआ, अलग हो गया भारत, तभी भी उनको कुछ बहनों को पता नहीं क्या हो रहा है। 47 में अलग हुआ, 50 तक बाबा वहीं रहे, लेकिन संस्था के ऊपर कोई आंच नहीं आई कोई भी प्रकार का, क्योंकि वो लोग कहते थे ये तो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह का संदेश पैगाम देने वाले पैगंबर हैं। इसलिए वहां जो चीफ मिनिस्टर बना उसने बहुत बाबा को मदद की, और उसका पोतरा भी ज्ञान में है। कराची में, अल्लाह बख्श नाम था चीफ मिनिस्टर का, और उसने बहुत अच्छा सहयोग दिया और बाबा को कहा कि बाबा अगर आप भारत जाना चाहते हैं तो हम आपको पूरे सामान सहित भेज सकते हैं, भले आपकी सेवाएं वहां अच्छी होंगी, क्योंकि आपके धर्म के हिसाब से प्रचार आपका उधर अच्छा होगा। और उसी समय बाबा ने भी ऐसी वाणियां चलाई कि बच्चे अंत में तुम पहाड़ों पर तपस्या करोगे, पहाड़ों से विनाश देखोगे, बहुत अच्छी भारत के अंदर सेवाएं होंगी। इसलिए फिर 1950 में पूरी ही संस्था सामान सहित ट्रांसफर हो करके आबू को चुन लिया। फिर उसके बाद जो उनके संबंधी थे उन्होंने निमंत्रण दिया, बहनें जाने लगी, सेवाएं शुरू हुई और इनसे अच्छे अच्छे अनुभव होने लगे। दिव्य साक्षात्कार देवी के रूप में, जो बहनें जिसके पास गई घरों में उनकी दृष्टि से ही लोगों को अनुभव होता था ये तो कोई देवी अवतरित हुई है, क्योंकि दुनिया का कुछ ज्ञान तो था ही नहीं, अलौकिकता भी थी, दिव्यता भी थी, और एकदम भट्टी करके तपस्या करके निकली थी बहनें, तो बड़े अच्छे अच्छे अनुभव होने लगे और धीरे धीरे सेंटर खुलने लगे, निमंत्रण मिलने लगे। बहुत मेहनत करके बहनों ने सेवाएं प्रारंभ की, तो उन सेवाओं का विस्तार होते 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 आज यज्ञ कहाँ पहुंचा है हम सब देख रहे हैं। तो बाबा ने यज्ञ की स्थापना की और यज्ञ के संभालने के लिए ब्राह्मणों को निमित्त बनाया। तो आप सभी यज्ञ रक्षक अपने आप को समझते हैं? जो समझते हैं कि हम यज्ञ रक्षक बाबा के बच्चे हैं वहां तो उठाओ सभी। अच्छा, आज हम यज्ञ रक्षक की परिभाषा सुनाने आपको जा रहे हैं। यज्ञ रक्षक किसको कहा जाता है, यज्ञ स्नेही किसको कहा जाता है, यज्ञ सहयोगी किसको कहा जाता है, क्योंकि तीनों प्रकार के बच्चे हैं। रक्षक तो इस यज्ञ का भगवान स्वयं ही है, उसका यज्ञ है, वो खुद रक्षा कर रहा है। एक दिन मैंने ऐसे ही यहाँ बैठा था, पहरे वालों से पूछा कि आपको बाबा ने यज्ञ रक्षक की ड्यूटी दी है, क्योंकि सिक्योरिटी माना रक्षा, तो आप यज्ञ रक्षक हैं, आपको बाबा ने किस लिए यहाँ पर बिठाया है? क्योंकि बाबा कई बार मुरली में कहते हैं कि वैसे तो बाबा इस यज्ञ की पूरी रक्षा खुद ही कर सकता है, अकेले पहरे वाले की क्या जरूरत है, व्यक्ति क्या रक्षा करेगा, जब भगवान इसका रक्षक है तो इसका कोई कुछ भी बिगाड़ सकता है क्या? लेकिन फिर भी स्थूल रूप में पहरे वाले सब प्रकार की सिक्योरिटी का प्रबंध किया जाता है, क्यों? तो बाबा ने एक बार कहा था कि बच्चे तुम अगर इस स्थान पर जागती ज्योत होकर बैठते हो, बाबा की याद में कंटिन्यू रहते हो, तो वो जो वाइब्रेशन है, वो जो सकास है, वो कई आत्माओं को मदद करती है, ये भी एक रक्षा हो जाती है। तो यज्ञ रक्षक बनने के लिए सबसे पहले हम सबको स्वरक्षक बनने की जरूरत है। हम सब अगर स्वयं स्वयं की रक्षा करना सीख जाएं, स्वयं की रक्षा कैसे करनी है, हमारा वैरी तो कोई है ही नहीं, आज भी बाबा ने कहा किसी से वैर नहीं रखना, निर्वैर हो, तुम्हारा किसी दुश्मनी तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी बाबा कहता है तुम अपनी रक्षा अपने आप करो, क्योंकि आपके चारों ओर इस वायुमंडल के अंदर बहुत सी अशुद्धता, बहुत सी अपवित्रता का वाइब्रेशन है, और यदि पवित्र आत्माएं, संगमयुगी ब्राह्मण आत्माएं जिन्होंने संकल्प किया है हम मन वचन कर्म से पवित्र रहेंगे, उनको उस पवित्रता को खंडन करने वाले विचारधाराएं जो वायुमंडल में हैं, वही आत्मा के शत्रु हैं, और उनसे हम सबको पहले अपनी रक्षा करनी है कि किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी का प्रभाव मेरे ऊपर न पड़ जाए। आप जिस स्थान पर जाते हैं, बैठते हैं, क्लास करते हैं, रहते हैं, उस स्थान का वायुमंडल अगर योगयुक्त है, वातावरण अगर अच्छा है, तो आपकी सेफ्टी है, और अगर वायुमंडल में कोई नेगेटिविटी है, बहुत व्यर्थ चिंतन है, पर चिंतन है, पर दर्शन है, और उस वायुमंडल में आप जाते हैं, तो वहां के वायुमंडल में आपकी सुरक्षा नहीं है, क्योंकि आपके विचारों को, आपकी प्योरिटी को कहीं न कहीं कोई नेगेटिविटी खंडित कर रही है। इसलिए जरूरी है पहले स्वरक्षक बनने की। आप जिस स्थान पर रहें, जहां पर भी हैं, अपने विचारों को बहुत शक्तिशाली, बहुत शुद्ध बहुत पॉजिटिव बना करके रहें कि मुझे इसी आभा मंडल के अंदर रहना है। दुनिया का वातावरण तो बहुत पतित है, बहुत विकारी है, बहुत प्रकार के वैरायटी लोग हैं, और उनके बीच में रह करके मेरी अपनी प्यूरिटी की रक्षा करनी है, मेरी अपनी धारणाओं की रक्षा करनी है। कोई भी प्रकार से मुझे कोई ऐसे साधारण और व्यर्थ संकल्प भी टच न कर पाए, वो मेरे ऊपर अटैक न करें, उससे हमें अपनी रक्षा अपने आप करनी है। इसके लिए कोई दूसरा रक्षक नहीं बनने वाला है। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं बच्चे अपने आप ही अपना सुरक्षा कवच अपने चारों ओर पहन लो। जैसे कहीं भी कई अटैक होने वाले, कईयों के एक बहुत दुश्मन होते हैं, कोई कारण से कहीं पर कोई व्यक्ति वीआईपी जाते हैं और समझते हैं यहाँ सुरक्षा की बहुत जरूरत है, तो भले कई सिक्योरिटी गार्ड होते हैं लेकिन फिर भी उनके पास सुरक्षा कवच होता है, बुलेट प्रूफ जैकेट होती है या ऐसी गाड़ी होती है जिसमें कोई अटैक न कर सके, अगर करे भी तो भी उसके ऊपर अटैक न हो। तो सबसे बड़ी बात है कि हम सब ब्राह्मण आत्माएं, भले कोई भी हमारा व्यक्ति दुश्मन नहीं है, कोई से हमारा वैर विरोध नहीं है, फिर भी इस संसार के अंदर बहुत सारी व्यक्तियां, बहुत सारी आसुरी वृत्तियों वाले व्यक्ति इस वायुमंडल में हैं, और उसके अंदर मुझे सुरक्षित रहना है। जरूरी है अपने रक्षा कवच को मजबूत करना। तो इसलिए हम सब पहले अपने स्वरक्षक बने, और उसके लिए बाबा ने हम सबको कहा है कि अपने शुद्ध विचारों से अपना सुंदर ओरा तैयार करो। ये जो शरीर है, हड्डी मांस का पुतला है, इसके चारों ओर एक लाइट का ओरा है हर एक के साथ, और वो लाइट का ओरा उतना शक्तिशाली उसी का बनता है जो जितना शुद्ध संकल्पों में रमण करता है। इसलिए अमृत वेले से लेकर रात तक हमारे चिंतन की धारा बड़ी अच्छी, बहुत शुद्ध और पॉजिटिव हो। नेगेटिविटी दिखाई देगी, लगेगा ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, और बाबा कहते हैं उसको आप पॉजिटिव में चेंज कर दो। व्यर्थ का वर्णन चिंतन न हो, क्योंकि कोई भी व्यर्थ बड़ा रूप तब लेता है, कोई भी बातें बड़ा रूप तब लेती हैं जब हम उनको व्यक्त में वर्णन करते हैं, या हम उसका बहुत चिंतन कर लेते हैं तो उसका रूप हमारे आगे बहुत बड़े रूप में आता है। इसलिए बाबा हम सबकी सुरक्षा के लिए पहला संकल्प यही देते, बच्चे सदा शुद्ध और शुभ संकल्पों में रमण करने की आदत डाल लो। इससे आपका ये जो ओरा है बहुत शुद्ध और शक्तिशाली हो जाएगा, कोई भी विकारी पतित किसी भी भावना वाली आत्माएं, स्वार्थ वाली आत्माएं आपके ओरे को भेद करके आप पर अटैक नहीं कर सकती हैं। इसलिए सवेरे सवेरे उठ करके अमृत वेले बाबा से ये अमर भव का वरदान हरेक को लेना है कि मैं बाबा आपके इस ब्राह्मण जीवन में अमर रहूं, कोई भी अटैक करके मेरी अकाले मृत्यु न कर दे, कोई भी कारण से कभी भी मेरा ऐसी मौत न हो जो मैं आपके हाथ और साथ को छोड़कर माया का बन जाऊं, क्योंकि माया का बनना भी अकाले मौत है। ब्राह्मण बन गए, इतनी अच्छी शुद्ध पवित्र जीवन बाबा ने दी, इतनी अच्छी पालना हम सबको मिल रही है, इतनी ऊंची पढ़ाई हम सब पढ़ रहे हैं, बाबा हमको बाप टीचर सतगुरु रूप से हर प्रकार से हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, फिर भी अगर कहीं न कहीं कोई भी प्रकार की आसुरी शक्तियां मेरे पर अटैक करती हैं, आक्रमण करती हैं, माना मेरा सुरक्षा कवच कमजोर है। इसलिए हरेक ब्राह्मण आत्मा को ये जवाबदारी है खुद अच्छे चिंतन में रमण करे, और उसके लिए स्थूल साधन है अच्छा साहित्य, अच्छा अध्ययन, अच्छी अच्छी पुस्तकें, अच्छी अच्छी चीजें देखना, पढ़ना, सुनना, जिसका प्रभाव मन के अंदर अपने विचारों पर पड़ता और उससे ही विचारों का निर्माण होता है। अगर आप अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं, अच्छे संघ में रहते हैं, अच्छा साहित्य अध्ययन करते हैं, अच्छी चीजें देखते हैं। अगर ऐसी कोई सीरियल देख रहे हैं जिसके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी है तो वो आपके विचारों को, उस आपके आभा मंडल को खंडित करने वाली है। इसलिए बाबा ने हम सबको ऐसे नियम बना करके दिए हैं जो हमारे रक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। तो अगर हमें स्व की रक्षा करनी है तो ईश्वरीय नियमों को कंगन के रूप में, बंधन के रूप में अपने जीवन में धारण करना आवश्यक है। कोई बंधन ऐसा नहीं है कि ऐसा क्यों कहा जाता है, बाहर नहीं खाना, बाहर नहीं जाना, ये नहीं देखना, वो नहीं देखना, ऐसी कई बातें कई लोगों को भारी लगती हैं और उसके कारण इतने ऊंचे ज्ञान से भी कई विमुख हो जाते हैं। ये तो बहुत कड़ी धारणाएं हैं, ये तो बड़े कड़े नियम हैं, इनको पालन करना बहुत बड़ी बात है, डर जाते हैं बेचारे। लेकिन अगर बाबा के बच्चे इस बात को महसूस करें कि ये त्याग नहीं है, ये कोई बंधन नहीं है, ये बहुत बड़ा ऊंचे से ऊंचा भाग्य है जो आज हमारी इस कलयुग के बीच में सुरक्षा कर रहा है। आज आप देखेंगे जितने भी नेगेटिविटी प्रभाव पड़ते हैं किसी पर, कोई पर, किसी मंत्र का, किसी तंत्र का, किसी तांत्रिक का, किसी भूत विद्या का जितने भी प्रभाव पड़ते हैं, उन सब का कारण है कुछ न कुछ हमें वो खिला देते हैं, हम खा लेते हैं या उनसे कोई स्वार्थ रखते हैं, कोई कामनाएं रखते हैं, तो उनका प्रभाव हमारे पर बहुत जल्दी पड़ जाता, फौरन पड़ जाता है। और बाबा ने अपने बच्चों को सुरक्षित करने के लिए पहले कह दिया, बच्चे तुम ऐसी चीजें बाहर की कोई भी नहीं खाओ, कितना भी कोई अच्छी चीजें देने दे, कोई भी अच्छी रीति से खिलाए पिलाए, आप अपनी इस परहेज के अंदर चलो, ये आपकी सुरक्षा है। क्यों आप किसी के हाथ का खाते हो, क्यों आप किसी बंधन में बंधते हो, अगर कर सकते हो अपने आप तो सबसे अच्छा है, अपने आप बनाओ, अपने आप खाओ, अपने परिवार के अंदर मिल करके बनाओ और खाओ, योग युक्त भोजन मिले, ये आपकी सुरक्षा करेगा। तो स्वरक्षक बनने के लिए सबसे जो ईश्वरीय नियम और मर्यादाएं हैं, अगर हम इसका कंगन बांध लेते हैं कि हमारे लिए हमारी रक्षा करेंगे, बहुत सेफ्टी है इसके अंदर, बहुत सारी बुराइयों से, बहुत सारे वार जो हो रहे हैं आसुरी शक्तियों के, उनसे हम बच सकते हैं। जितना जिसने पालन किया उतना सुरक्षित है और निर्भय है, जो सुरक्षित है वही निर्भय है। अगर नहीं सुरक्षित है उसको भय लगेगा, पता नहीं कहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ जाऊंगा ऐसा ना हो जाए, वहां जाऊंगा ऐसा ना हो जाए। आज की दुनिया में जितने भयभीत लोग हैं उनका कारण है उनके जीवन की सुरक्षा नहीं है। ब्राह्मण जीवन में भी अगर भय लग रहा है, कहीं भी पुरुषार्थ में भय लग रहा है, धारणाओं में भय लग रहा है, कहीं परिवार में जाते वहां भय लग रहा है, तो उसका कारण है हम निर्भय नहीं बने, माना हमने अपनी धारणाओं को मजबूत नहीं बनाया। जिनकी धारणाएं मजबूत है ना, उनका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। ये हमारे जीवन का प्रैक्टिकल अनुभव है। जब हमारे पर बहुत सारा पेपर आए लौकिक के अंदर, क्योंकि मैं अपने परिवार में इकलौता बेटा था, मेरे पिताजी तीन भाई थे और तीनों भाइयों के बीच में एक संतान, एक बहन एक भाई। बहन चली गई 7 साल की, सेंटर पर रहने लगी, और मैं जब निकलने लगा तो हमारे दादाजी जो थे बहुत बड़े तांत्रिक थे, पिताजी के बड़े भाई जो थे, और वो बड़े बहुत मना, अभी तक भी उन्होंने खूब पूजा पाठ किया, हनुमान जी की चालीसा करते थे और भूत प्रेत निकालते थे। तो जब मैं उनके पास ही अधिकतर रहता था, जब यहाँ आया और मैंने कहा मैं यहाँ रहूंगा, तो पहले तो उन्होंने सोचा कि कैसे भी करके इसको बुला लूं वापस, नहीं रहे वहां। लेकिन फिर देखा उनकी शक्तियां यहाँ काम नहीं कर पाई। जब मैं यहाँ आ गया तो मैं पूछता था, आप क्या कर सकते हो मेरा, तो कहते थे मैं आपका क्या कर सकता हूँ, अगर आप वहां से बाहर होते तो मैं बताता। आप जिस स्थान पर रह रहे हो वहां पर बहुत बहुत शक्तियां हैं, और वो शक्तियां इतनी शक्तिशाली हैं जो मेरी शक्तियों को अंदर आने नहीं देती, जाती हैं वापस चली जाती हैं। बाहर कहीं जाता था तो उनको पता चल जाता था आज उधर निकला है, आज उधर निकला है, सब बता देते थे गांव में। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, आप प्रयास करो, मुझे बाबा ने चुना है, मैं तो कोई अपने मन से नहीं आया बाबा के घर में, ये तो अचानक आ गया और यहां रह गया, बाबा ने मुझे पसंद कर लिया, इसलिए बाबा की नजर मेरे ऊपर लगी है, इसलिए कोई की नजर अब नहीं लग सकती। तो मैं भी उनको चैलेंज करता था, लेकिन जरा भी अगर मेरा कहीं मोह होता, ममता होती, इतनी खेती है, इतनी दुकानें हैं, इतने घर हैं, बहकावे में अगर आ जाता, जरा भी कोई हमारी आसक्ति होती, तो बाबा का एक शब्द मुझे याद रहता है, जहां कोई भी प्रकार की कामनाएं हैं वहां किसी का सामना नहीं किया जा सकता। इसलिए कोई भी प्रकार की व्यक्ति से कामना नहीं चाहिए। बहुत लालच देने की कोशिश की, ये है ये है ये है, हमने हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको बाबा मिल गया, सब कुछ मिल गया। फिर उन्होंने अटैक किया हमारी माँ के ऊपर, लौकिक माँ पर। वो थोड़ी सी उनके साथ मिक्स हो जाती थी, कभी भोजन बना के भेज देती थी, क्योंकि उनके साथ और कोई भोजन बनाने वाला नहीं था। कभी बीमार पड़े तो उनको पूछ लेती थी। बस माँ के ऊपर उनका अटैक हुआ, और इतना बड़ा अटैक हुआ जो माँ ने उसी याद में शरीर छोड़ दिया। और जब शरीर छोड़ा तब तो मुझे दादी कहती, अब तेरे पर पेपर आया। हंसने लगी कि अब देखे तुम कैसे पास होके आता है, क्योंकि अब कोई खाना बनाने वाला घर में नहीं, और तीनों घर के मालिक तुम हो, और तुमको ये संभालना है जाकर के, जैसे भी जा सकते हो जाओ, करो, क्या करोगे। हमने कहा बाबा मेरा साथी है और दादियां हमारे पर दृष्टि रखें तो हम पास होके आ जाएंगे। बोला ठीक है जाओ। जब मैं लौकिक में गया, माँ ने श्री छोड़ दिया था, संस्कार हो चुके थे, काफी दिन के बाद, 5-7 दिन के बाद यहाँ टेलीग्राम आई। उस समय मोबाइल तो थे नहीं, गांव से एकदम। तो मैं एक संदेशी को साथ लेके गया, क्योंकि हमारी बुद्धि शायद न इतना निर्णय ले सके। इन संदेशी को लेके गया और उसको मैंने कहा, पहले दिन ही तुम जाओ बाबा को भोग लगाओ। माँ के निमित्त भोग लगवाया, और जब भोग लगवाया तो बाबा का मैसेज आता है। बाबा ने और कोई नहीं बात कही, लेकिन दिखाया बहुत मोटे मोटे रस्से और मेरे को बांधने की पूरी तैयारी, दिखा दिया दृश्य और दिखा के कहा, अगर बच्चे को सेफ रहना है तो केवल 2 दिन की उसको यहाँ रहने की छुट्टी है। मैंने 15 दिन की छुट्टी दादी से ली थी कि मैं 15 दिन लौकिक में रह के आऊं। दादी ने तो छुट्टी दे दी, लेकिन बाबा ने ऊपर से कहा केवल 2 दिन की छुट्टी है। अब 2 दिन में मैंने सब काम उतारा। अब क्या काम उतारना था, पिताजी चाचाजी बड़े निश्चय बुद्धि बाबा के पक्के बच्चे थे, दादाजी ताऊजी जो थे वो थोड़ा एंटी थे। मैंने कहा मुझे तो टेलीग्राम आ गई है, मुझे तो भी जाना ही है, लेकिन अगर आप लोगों को भी मेरे जैसी जीवन बनानी, तो अभी कुमार बन गए, इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा। कुमारों की जीवन कितनी फ्री और स्वतंत्र रहती है, तो आप भी अभी कुमार हो गए, बाबा ने ड्रामा में आपको भाग्य दिया है। इसलिए जो माँ ने अंदर अंदर इकट्ठा किया ना मेरी शादी के लिए, बहुत सारे कपड़े जेवर, बहुत सारी तैयारियां होती है ना माताओं की, गुप्त, भले ज्ञान में होती है लेकिन गुप्त तैयारी होती है। तो बहुत तैयारियां थी, बहुत सारे हमने देखा, सब सोना चांदी बर्तन ये वो सब इकट्ठा थे। नहीं, सबको या तो यज्ञ में दे दो या तो बेच दो, पैसा आए वो बाबा के घर में लगा देना। बोला इतना क्या करना। हमने कहा 2 महीने के अंदर सब निकाल दो तो आप भी फ्री हो जाएंगे, फिर आपको हम देखेंगे, सेट करेंगे। और उन्होंने प्रयास करते करते 2 साल लगाए, सब कुछ निकाला, लेकिन खेती नहीं बेची, घर नहीं बेचा। और वो सब बेच करके जब फ्री हुए तो फिर चाचा जी को पहले सरेंडर कराया, सेवा में बुलाया, यहीं अभी तक भी हैं, शांति वन में रहते हैं, अभी काफी बुजुर्ग हैं, करीब 88-89 के हैं। और पिताजी को भी सेकेंड टाइम उनको बुला के सरेंडर करा दिया, उनको भी यहीं रख दिया, और कुलदीपक के रूप में बाबा को घर में बिठा दिया। बाबा कुलदीपक है ना, लेकिन निश्चय है तो कुलदीपक बनता है। तो आज तक भी घर में गीता पाठशाला चलती है, गांव वाले क्लास चलाते हैं, खेती संभालते हैं, कुलदीपक बाबा है, रोज भोग लगता है, मुरली चलती है। और अभी भी अगर कोई जाता है तो घर के अंदर 20-25 भी चले जाए तो आराम से रहते हैं, खाते पीते मौज करते हैं। बाबा का घर आश्रम बना हुआ है और हम बाबा के यज्ञ में सेवा दे रहे हैं सब। तो ये निश्चय की विजय है। और ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे जिनकी बाबा रक्षा करता है, यज्ञ रक्षा करता है, निमित्त आत्माएं रक्षक बनती हैं, जो स्वरक्षक स्वयं है। अगर वहां जरा भी मेरे कमजोर संकल्प होते तो बहुत सारी मेरे लिए तैयारियां थी और मैं बंधन में होकर आज पता नहीं कहां होता, जो आज आपके आगे बोल रहा हूं। आप सोच सकते हो अगर आज कोई लौकिक जीवन में चला जाए तो उसका क्या हाल होगा। तो हम सब बाबा के बच्चे, स्वरक्षक और मर्यादा रक्षक। जो ईश्वरीय मर्यादाएं हैं उनके कंगन में स्वयं को बांधना, जितनी ईश्वरीय मर्यादाएं बाबा ने बताई हैं उनको अपने जीवन की अंग बना लो। ब्रह्मचर्य की मर्यादा कईयों को बहुत कठिन लगती, पारिवारिक जीवन में रहते हुए इतनी पवित्र जीवन जीना, और बाबा तो कहते हैं बच्चे ये तुम्हारा स्वधर्म है, ब्राह्मण जीवन की यही एक शान है और इसी से ही सत धर्म की स्थापना होनी है। अगर तुम यज्ञ रक्षक बनना चाहते हो तो दृढ़ता से इस संकल्प की पवित्रता की प्रतिज्ञा कर लो कि मन वचन कर्म से स्वपन से भी मैं आत्मा बाबा आपकी हूँ, आपके सिवाय मेरा कोई नहीं। अगर दिल से बाबा को अपना कह दिया और ये प्रतिज्ञा कर ली तो ये यज्ञ की रक्षा है, और जहां पर यज्ञ के अंदर विघ्न आते हैं वहां पर यही एक मूल कारण बनता है, कहीं न कहीं कोई आत्माएं इस व्रत की इस मर्यादा की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। जब उल्लंघन होने लगते हैं तो अनेक प्रकार के विघ्न खड़े होते हैं और वो यज्ञ के लिए कई प्रकार के जैसे कीचड़ उछालने वाले हो जाते हैं। कहते हैं ना यज्ञ जब रचा तो यज्ञ में असुरों ने विघ्न डाले और विघ्न के रूप में दिखाते हैं गोबर डाला, कीचड़ा फेंका। जब यज्ञ रच रहे थे ऋषि मुनि तपस्वी लोग तो असुरों ने उस पर कीचड़ फेंकते थे, गोबर फेंकते थे। अब कोई स्थूल रूप में गोबर और कीचड़ फेंकने की बात नहीं है, लेकिन बाबा ने जो ये अविनाशी यज्ञ रचा है, ज्ञान का यज्ञ रचा है, इस यज्ञ में भी अगर कोई आत्माएं अपवित्र विचारधारा वाली भी रहती हैं, अपवित्र विचारों का एक उनका संकल्प चलता रहता है तो भी इसके अंदर जैसे वो कीचड़ा पड़ता है। इसलिए बाबा कहता है यज्ञ रक्षक माना ऐसी पवित्र शुद्ध वृत्तियों वाली आत्माएं मुझे चाहिए जो अपने वाइब्रेशन से इस किले को मजबूत कर दें, जिसके अंदर कोई भी आसुरी शक्तियां अपना प्रभाव न डाल सके, हर आत्मा सुरक्षित हो जाए, यज्ञ सबके लिए सुरक्षा का कवच बन जाए। तो यज्ञ एक बेहद का बाबा का घर है और छोटे छोटे यज्ञ आपके सेंटर्स हैं जहां पर बाबा की ज्ञान मुरली चलती है, ज्ञान का यज्ञ है। यज्ञ इसीलिए कहते हैं यज्ञ माने जहां यह आग जलती है, और यज्ञ माना जहां कुछ न कुछ स्वाहा किया जाता है। तो अग्नि भी है, कौन सी अग्नि है? लगन की अग्नि है। जितनी आत्मा के अंदर लगन बढ़ती जाती है, प्यार बाबा के प्रति बढ़ता जाता है, वो जैसे अग्नि का काम करती है, उस लगन की अग्नि में कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। अगर मेरी आत्मा की लगन बाबा के साथ अटूट है, प्यार एक अटूट है, तो विघ्न क्या करेगा? जहां प्यार में कमी आती है वहां ये बात है, ये बात है, ये बात है। अरे लग गई लगन, कहते हैं मीरा को लग गई लगन, कुछ भी हो जाए क्या करेगा कोई भी, चाहे जितने विघ्न आए, कोई ने सांप की टोकरी भेज दी, कोई ने विष का प्याला भेज दिया, कोई ने कुछ किया, लेकिन उसके लिए वो विघ्न कोई नहीं थे, वो खेल खेल में पार हो गई। तो वो लगन थी, भगवान के प्रति प्यार था, लगन थी, इसके कारण उसके लिए कोई विघ्न बड़ी बात नहीं लगी और हंसते हंसते पार कर लिया। हम सभी भी अगर इस यज्ञ के अंदर बाबा के बच्चे बने, हम अपने लगन को चेक करें, इतना बाबा के प्रति दिल का प्यार है, इतना यज्ञ के प्रति प्यार है, यज्ञ ही हमारा सब कुछ है, ये बाबा ने यज्ञ रचा है, इसको आगे बढ़ाना, इसमें सहयोगी बनना, तन मन धन समय श्वास संकल्प जो कोई शक्तियां मेरे पास हैं वो बाबा के यज्ञ में मेरी सफल हो जाए, उसको कहा जाता है यज्ञ रक्षक। स्नेही बहुत सारी आत्माएं हैं और गुप्त रूप में सहयोग भी दे रही हैं। अगर स्नेहियों का सहयोग न मिले तो यज्ञ आगे नहीं बढ़ेगा। बाबा के बच्चे तो गरीब हैं, थोड़ा थोड़ा दे करके अपना भाग्य बना रहे हैं। गरीब निवाज बाबा है, इसलिए कहता है कि गरीबों की पाई पाई से यज्ञ चलता है, थोड़े थोड़े पैसे से इतना बड़ा यज्ञ चल रहा है। कैसे वृद्धि हुई अगर मैं इतिहास सुनाने बैठूं तो कितने घंटे आपको पता चलेगा, कितने घंटे लग जाएंगे, क्योंकि 72 से ही सारी वृद्धि यज्ञ की मैंने देखी है। हर साल एक नया भवन बना, हर साल, और उस भवन को बनाने में भी 83 तक कोई नौकर और इंजीनियर बाहर के नहीं थे, सिर्फ मधुबन निवासी करते थे, चाहे वो ऊपर छतें पड़ी, सरिया बांधी, सीमेंट कंक्रीट उठाई या नक्शे बनाए, ओम शांति भवन का भी नक्शा। ओम शांति भवन बनने के बाद कुछ बाबा का वरदान मिला, उस स्थान से वरदान मिला, जो सारा यज्ञ फिर चेंज हो गया। क्या क्या करते थे हम लोग, अपने हाथ से मधुबन में धोबी घाट होता था, माना हाथ का धोबी घाट, माना जैसे कपड़े धोबी पाटे पर धोते हैं ना, देखा हो शायद बॉम्बे में तो बहुत कम देखा होगा, लेकिन वो तालाब के ऊपर खड़े होकर के एक पाटे के ऊपर कपड़े छटकते हैं, सो सो करते हैं। मधुबन में धोबी घाट था, यहाँ जहाँ बाथरूम बने ना यहाँ पर, और हम सबकी ड्यूटी थी, सब भाई बहनों के कपड़े रात को इकट्ठा करते, भट्टी चढ़ाते थे, माना चूने में और उसमें ब्लीचिंग वगैरह में साबुन में डुबो करके भिगो करके फिर उसको चढ़ा देते थे और नीचे आग लगाते थे, पक जाते थे रात भर में। और जब रात भर में वो पक जाते थे ना, तो सुबह सुबह जा करके उधर क्लास चलता था, इस हमारा धोबी घाट चलता था, सटके लगते थे। और इतने कपड़े अच्छे होते थे तो कहते थे ब्रह्मा कुमारियों के कपड़े जो है ना पैरिस से धुल करके आते हैं, इतना सुंदर चमकते थे वो, क्योंकि धोबी घाट रात भर जो कपड़ा आग में पका है साबुन सोडे के अंदर, और जब सटा जाएगा तो उसके बाद उसमें कितनी चमक आएगी। तो वो जब कपड़े पहनते तो सब कहते थे वाह कहां से धुलते। तो 11 साल तक 72 से 83 तक हम लोगों ने, सभी मधुबन वालों ने सब मिलकर के करते थे, कोई धोबी घाट छटका मारता था, कोई नील लगाता था, कोई सुखाता था, कोई निचोड़ता था, 15-20 का ग्रुप तो लग ही जाता था। तो वो एक काम था, और दूसरा काम ये सबसे बड़ा था कि ठंडी बहुत पड़ती थी यहाँ पर, और ठंडी पड़ने के कारण सबको गर्म पानी चाहिए, और गर्म पानी ये रनिंग वाटर नहीं था सबके बाथरूम में, तो एक जगह पर बॉयलर गर्म करते थे, टंकी गर्म करते थे, और सवेरे 3 बजे 3:30 बजे उठ करके सबके कमरों में बाल्टियां भर भर के पहुंचाते थे। ये सबसे हार्ड वर्क, सब कमरों में पहुंचाना नीचे ऊपर, तो ये काम हम लोगों को मिला था मधुबन में, ये सेवा थी। और रोटी जो बनती थी वो चूल्हे की थी, लकड़ी पर थी, और कितनी गीली लकड़ियां, बरसात बहुत होती थी, सबकी आंखें ऐसे लाल लाल, इतनी गीली होती थी। तो मधुबन में ये सब स्थूल सेवाएं थी, कोई भी ज्ञान युक्त तो था ही, लेकिन ये सब सेवाएं हम लोग ही मिलकर के करते थे, कोई नौकर नहीं थे। तो 11 साल तक ये सेवाएं बाबा के घर में यज्ञ में करने से, बाबा ने कहा यज्ञ सेवा जिसने दिल से की है, यज्ञ पिता अगर उस पर प्रसन्न हो गया तो उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। आज हम लोगों के जीवन का ये अनुभव है कि यज्ञ पिता यज्ञ माता इतने प्रसन्न हुए हैं, जो कोई भी संकल्प भी करने की जरूरत नहीं, जो संकल्प करो वो चीज हाजिर हो जाती है। संकल्प उठाने से पहले वो चीज हाजिर है, ऐसे लगता है जैसे बाबा कोई मेरे विचारों को ऊपर से कैच करके वो भेज रहा है सब कुछ। सब प्रकार की, अब कोई भी बाबा का स्लोगन पहले जो था अभी चेंज हुआ है, पहले था कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में, और अभी चेंज हुआ है कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। हम सभी मधुबन के ब्राह्मणों का तो ये अटूट निश्चय और विश्वास है कि सचमुच कोई भी प्रकार की अप्राप्ति, कोई भी प्रकार की, कभी टच भी नहीं करती मेरे जीवन में अप्राप्ति है। और जहां अप्राप्ति नहीं है वहां असंतुष्टता कहां से आएगी, जहां सर्व प्राप्तियां हो रही हैं वहां सब प्रकार की संतुष्टता है। तो मैं तो आपको ये कहूंगा अगर सच्चे दिल की संतुष्टता का अनुभव करना है तो यज्ञ पिता और यज्ञ माता को प्रसन्न कर लो, और वो बहुत भोले हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। भोलानाथ तो शिव बाबा है, भोलानाथ है कहते हैं इतना भोला है, इतना भोला है, जो गज और ग्राह की कहानी सुनी होगी, जब गज को ग्राह ने पकड़ लिया तो गज की तो आदत होती, हाथी की आदत होती है सोंड में पानी भरने और ऊपर से उठा करके फेंकने की। तो कहते हैं जब उसने ग्राह ने गज को पकड़ा, पांव उसका पकड़ लिया हाथी का, मुंह में दबा के खींचने लगा, तो चिल्लाने के हिसाब, पानी भरा हुआ था सोंड में, तो चिल्लाने के हिसाब से उसने सोंड ऊपर से उठाई और ऊपर से पानी ऐसे छोड़ने लगा सोंड से। तो भगवान प्रसन्न हो गए कि गज ने मेरे ऊपर आज जल चढ़ाया, और उन्होंने रक्षा करने के लिए दूत भेज दिए और उसकी रक्षा की, ग्राह को खत्म किया और गज की सुरक्षा हो गई। कहानी है, लेकिन प्रैक्टिकल तो ये हम देख रहे हैं कि माया ग्राह के रूप में किसी भी महारथी का पग पकड़ लेती है कभी न कभी। अगर वो सच्चे दिल से कह दे मेरा बाबा, तो वही सब उसी समय वो रक्षा के लिए हाजिर हो जाएगा। इसलिए बाबा कहता है मैं बहुत भोलानाथ हूं। अब भोलानाथ बाबा को प्रसन्न करना जिसका यज्ञ है, वो यज्ञ पिता कौन है, उसका नाम बताओ। एक यज्ञ माता का नाम बताओ, नया नाम बताऊंगा, वैसे सुनते हो मुरली के अंदर। हमारा यज्ञ पिता जो कल्प वृक्ष के नीचे दिखाया हुआ है वो है कपल मुनि। कपल, कपल कहते हैं जोड़े को, कपल, कपल मुनि है ना, कपल है माना शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों साथ हैं, ये कपल है, ये कपल मुनि है। और उसकी कहते हैं गऊ जो थी वो कामधेनु थी, और गऊ कोई स्थूल में जानवर की बात नहीं, ये मम्मा जो है वो कामधेनु बेटी है। जगत अम्बा और जगत पिता, कपल मुनि और कामधेनु, जो इस वृक्ष के नीचे, जो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला वृक्ष है, उसके नीचे बैठ करके तपस्या कर रहे हैं, और उसके साथ जो बच्चे सहयोगी सनेही बन गए, जो तपस्या में मददगार बन गए, उन सब की मनोकामनाएं कामधेनु मां पूरी कर देती है। इसलिए इस ब्राह्मण जीवन में कोई भी कामना रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब कामनाएं बाबा देख करके पूरी कर देने वाला है। क्या जरूरत है बच्चों की, कई बार कहता है मैं इच्छाएं पूरी नहीं करता हूं। इच्छाओं का जन्म तो सर्पणी के बच्चे जैसा होता है, एक पूरी होगी दस पैदा हो जाएंगे। इसलिए इच्छाएं मैं पूरी नहीं करता हूं, लेकिन आवश्यकताएं पूरी कर देता हूं। कोई भी ब्राह्मण जीवन में आवश्यकता है अगर, तो हम लोगों के जीवन का अनुभव है, चाहे वो बेगरी पार्ट था, चाहे आज का पार्ट है यज्ञ का, कोई भी चीज आवश्यक हुई है यज्ञ में, डिपार्टमेंट के अनुसार भी, पर्सनल भी, वो बाबा ने कहीं ना कहीं से हाजिर कर दी। और ऐसी डिपार्टमेंट्स चल रही हैं कम खर्च वाला नसीन, भले आप लोगों को दिखाई दे कि यज्ञ के अंदर शायद बहुत आ गया, बहुत खर्चा है, लेकिन अगर एक एक डिपार्टमेंट में जाकर के आप अनुभव पूछेंगे, तो जिसने यज्ञ की डिपार्टमेंट को संभाला है वो कैसे इकोनॉमी से उसको बढ़ा रहा है, कितनी उसकी सुरक्षा करा कि एक एक पैसा कीमती है, एक पैसा भी इसका व्यर्थ न जाए, किसका, किसकी मेहनत का कमाया हुआ है। तो आज इतना बड़ा जो यज्ञ चल रहा है उसकी जो पिल्लर्स हैं, जो न्यू हैं, जो पुराने हैं, सब बैठे, वो सब एक एक पैसे की बचत से इतने बड़े यज्ञ को आगे बढ़ा रहे हैं। सफल करने वाले सफल कर रहे हैं, और इतने गुप्त रीति से सफल करते हैं, जो बाबा कहता है बच्चे सफल उसका होता है जो एक हाथ से करे और दूसरे हाथ को भी पता न चले। माना गुप्त दान महापुण्य। अगर कोई करता है 100 रुपया और कहता है अरे मैंने तो इतना मदद किया, 1000 किया, 10000 किया, मेरे अगर नहीं करता तो ये यज्ञ नहीं होता, आज ये सेंटर नहीं बनता, आज ये हाल नहीं बनता, तो बाबा कहता जितना उसने किया उतना उसने बोल करके खत्म कर दिया। अगर गुप्त करने वालों की कहानी सुनाऊं तो कितनी कहानियां हैं ऐसे, बाबा के गुप्त बच्चे कहते मेरा वर्णन भी नहीं करना, कहीं बताना भी नहीं, चुपचाप दे के चले जाते हैं, डाल के चले जाते हैं। ओम शांति भवन कैसे बना आप सबको मालूम होगा, उस समय मधुबन केवल बेगरी पार्ट से थोड़ा सा आगे आया था, 9 लाख रुपए का बजट था ओम शांति भवन का, केवल 9 लाख। और दादी ने कहा कि ये मधुबन निवासी रोज शाम को ले जाती थी हम सबको, कहती थी चलो चाय वहीं पर है, आज चाय पकौड़ा बनवा के रख देती थी, और सबको कहती 3 घंटा कर्मणा सेवा जरूर करनी है, पत्थर तोड़ने की, बहुत बड़े बड़े चट्टान थी, कोई को अनुभव नहीं पत्थर तोड़ने का, उठाने का, सबने खून बहाया, लेकिन जो उसमें मेहनत की सबका हड्डियां लगी, आज उसका वाइब्रेशन देखो, कितना प्यार से, कितनी सेवाएं इस ओम शांति भवन से हो रही हैं अभी तक और हुई हैं, सबने अंगुली दे करके इतना बड़ा ओम शांति भवन 1 साल के अंदर खड़ा कर दिया। कलेक्टर ऐसा आया जो बिल्कुल एंटी, कहे नहीं एक भी पहाड़ नहीं तोड़ सकते हो, हिल स्टेशन पर पहाड़ तोड़ने की मना है। दादी ने कहा बहुत अच्छा, नहीं तोड़ना है, तोड़ने से भी हम छूट जाएंगे। ऐसा सुंदर आसन, ऊपर सिंहासन जैसा, फेस बन गया उसका, नहीं तो तोड़ देते तो नीचे चला जाता। इसमें भी भला हो गया, तीन मंजिल बन गया, नीचे से ऊपर तक तीन मंजिल हो गया। तो ये भी कई बातें, हर बात में रहस्य होते हैं। और जब बन के तैयार हुआ तो दादी ने जब कॉन्फ्रेंस अनाउंस की, इसके उद्घाटन में कॉन्फ्रेंस हुई फरवरी में, तो बोला आबू के जितने होटल हैं सब बुक कर दो, 3000 की कॉन्फ्रेंस हाल तो 3000 का है, 3000 लोगों को रखेंगे कहां, यहां तो बहुत कम रही व्यवस्था थी, सुखधाम भी नहीं बना था उस समय तो। 3000 लोगों के लिए आबू में एक भी होटल ऐसा नहीं था जो हम लोगों ने बुक न किया हो, और फरवरी मास में इतनी ठंडी, जो हम लोगों की सब होटलों में ड्यूटी लगी, होटल देखे नहीं क्या होते आबू के, इतने गंदे, इतने बिस्तर गंदे, इतने स्थान गंदे। हमने कहा हमारे ब्राह्मण यहां कैसे रहेंगे आके, सब सफाई किया, सब पानी गर्म करना, सफाई करना, सब होटल अच्छे करके फिर 3000 लोगों को एकोमोडेशन दिया। लेकिन दादी का जो उमंग था, उत्साह था, जो बोलने का उनका तरीका था, कोई भी काम होता था ना ऐसे कराती थी जैसे एकदम बल भर देते थे, न करने वाले को आ जाए कि भी करना है। एक बार क्या हुआ, एक कोयले की ट्रेन आई, ट्रेन में भर कोयला आता था मधुबन में, और वो भी बिहार से आता था। उस समय सब कोयले पर ही सिंगरिया चलती थी, चूल्हे जलते थे, कोयले का ही बोलबाला था, स्टीम नहीं थी, ये गैस नहीं थी। तो कोयले का पूरा ट्रेन आके खड़ा हो गया अबू रोड में, और कोयले का ट्रेन ऐसे समय पर आया जब होली की छुट्टियां थी, माना कोई मजदूर यहां पर राजस्थान में होली की छुट्टियों में नहीं मिलता, और वहां से नोटिस पर नोटिस आ रही है कि 2 दिन के अंदर अगर ट्रेन नहीं खाली की तो इतनी पेनल्टी पड़ जाएगी। तो दादी जी के कहते, अरे कोई बात नहीं, चलो क्लास में। अभी सब पांडवों को इकट्ठा किया, भाइयों को, और बोलती है मैंने एक हनुमान की कहानी सुनी है, पता नहीं वो कैसा था, एक हनुमान रातों रात इतना बड़ा पहाड़ संजीवनी बूटी के नाम से उठा के ले आया, और हमारे पास इतने सारे महावीर पांडव बाल ब्रह्मचारी, एक ट्रेन छोटी सी कोयले की, क्या बड़ी बात है, चलो 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 हम अभी खाली करके आते हैं, क्या बड़ी बात है। तो इतने महावीर थे, थे 60-70 ही उस समय महावीर, ज्यादा नहीं थे, हमारा झुंड नहीं था, अभी तो 1000 हम यहां हैं। लेकिन सबको अंदर इतना उमंग आया, दादी कह रही है चलो हम चलते हैं, चले गए। कहीं गए, कहीं थोड़ा नटखट किया, नहीं गए, और फटाफट सारी ट्रेन को कोयला बाहर कर दिया, और एक ट्रक था उस समय सब उठा उठा करके माउंट आबू ले आए। अब शाम को दादी ने कहा इनको रिटर्न तो देना चाहिए, इतनी मेहनत किया, सब हाथ मुंह सब काला, कोयले की दलाली में सब काला हो जाता ना, तो क्या रिटर्न दूं इनको। बड़ी खुश कि हमारे सारे पांडवों ने आज कमाल की है, इतनी ट्रेन खाली करके ले आए। बोली बाबा को बोलती हूँ, बाबा आज इनसे स्पेशल मिलने के लिए आए। गुलजार दादी बोला बैठो, बाबा को बुलाओ, और सब पांडवों को आज बाबा स्पेशल पिकनिक कराए। तो बाबा को बुला लिया दादी ने, और बाबा को जब बुलाया तो बाबा ने फिर मुरली चला दी। क्या मुरली चलाई होगी, आज मैंने 3 प्रकार के बच्चे देखे, 3 प्रकार के बच्चे देखे। जब दादी हाथ उठवा रही थी तो एक बच्चों के अंदर संकल्प चल रहे थे, 2 दिन में कितनी पेनल्टी लग जाएगी, मजदूर आ जाएंगे, कोयला वो तो सांस में भर जाएगा, कपड़े खराब हो जाएंगे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। बेचारे दिल शिकस्त हो गए, एक ने दिल शिकस्ती का जवाब दिया अंदर अंदर, बाहर नहीं बोले। दूसरे जो जिनके अंदर उमंग उत्साह था ना, उनके पास भी जाके कहते थे छोड़ो ना, हम लोगों का काम है थोड़ी है, मजदूर कर लेंगे। दूसरे थे जो अपना भी उमंग नहीं था, दूसरे का भी कट कर रहे थे। और तीसरे वो थे जिनको ये था कि दादी ने कहा है मुझे करना ही है। वो बच्चे आज पास हो गए, जो जा करके फटाफट सब काम करके आए, और जो जिन्होंने नहीं किया वो भी पास हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जिन्होंने दूसरे का उमंग कम किया उनके ऊपर बोझ चढ़ गया। इसलिए उस समय मुरली चलाई कि अगर आपके अंदर उमंग उत्साह नहीं है, आप नहीं कुछ कर सकते हो, तो कम से कम दूसरे के उमंग तो कम तो नहीं करो, उसको तो बढ़ाओ कि चलो मैं नहीं कर सकता, तुम तो कर। तो तुम अगर वो 14 आना उमंग वाले को तुमने 16 आना दिला दिया, तो 2 आना तुम्हारे हिस्से में जमा हो जाएगा। ये कर्मों की गति है। इतना बड़ा बाबा का यज्ञ चल रहा है, कई बाबा के गुप्त बच्चे इसको आगे बढ़ा रहे हैं, तन से, मन से, धन से, जो जिसके पास है। गरीब से गरीब बच्चा जब ज्ञान सरोवर बना ना, एक जमादार का काम करने वाली बाबा के गांव सेंटर पर आती थी, जमादार का काम करती थी, बेचारी सारा दिन सफाई करके फिर नहा धो करके स्वच्छ होकर के आके क्लास में मुरली सुनती थी। उसको पता चला वो ज्ञान सरोवर बन रहा है, उसने सारी कमाई जमा करके एक सोने की अंगूठी बनाई और गुप्त रीति से अपनी टीचर को देती है कि हमारी एक ईंट जो है ना ज्ञान सरोवर में लगवा देना जाकर। और दादी को जब पता चला कि ऐसी बच्ची ने जो इतनी मेहनत करके ऐसा काम करके भी पैसा कमा के यज्ञ में भेज रही है, उस अंगूठी को लिया और पहन करके डांस किया स्टेज पर बैठ करके कि देखो आज बाबा का जो यज्ञ चल रहा है ऐसे गरीब बच्चों के गुप्त दान से चल रहा है। मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक एक पैसा, एक एक ईंट ऐसे गरीब बच्चों की लगी जो आज इतना ज्ञान सरोवर बन गया, आज इतना ओम शांति भवन बना, आज इतनी बिल्डिंग्स बनी। तो यज्ञ की वृद्धि बाबा के बच्चों से हुई, ये है सहयोगी बच्चे जो दिल का जिनका स्नेह है बाबा के यज्ञ से। आज गेहूं कहां से आता है, चावल कहां से आता, कितना आता होगा, है अनुमान आप लोगों को? जब 30,000-35,000 का भोजन रोज बनता है, 3 टाइम का बनता है, तो कहां से निकलता जाता है, खान है क्या? कितने सैकड़ों बोरियां आटे की, चावल की, चीनी की जा रही हैं ऐसे। लेकिन इसके पीछे बाबा के गरीब बच्चों का बहुत बड़ा योगदान है। एक एक बोरी इकट्ठा करते हैं, जब गेहूं निकलता है ना पंजाब साइड में सबसे ज्यादा गेहूं होता है, अभी तो गुजरात में भी अच्छा होता है, वो सोचते हैं कि बाबा के घर में मैं एक बोरी तो भेजूं, और अगर एक सेंटर पर 100 लोग इकट्ठे 100 बोरी इकट्ठी कर देता तो पूरा ट्रक बन जाता है। तो ऐसे एक एक बच्चे के एक एक बोरी के सहयोग से ट्रक बनता और ट्रक बन करके इधर आ जाता। तो बाबा का यज्ञ जो है बड़ा गुप्त रीति से हर एक के तन मन धन समय के सहयोग से चल रहा है, और जिसने जितना किया रिटर्न देने के लिए भगवान खुद बंधा हुआ है और कहता है मैं उनका ही सफल करता हूं जिसको मुझे देना है, नहीं तो मैं बड़ा सौदागर हूं, बहुत बड़ा सर्राफ हूं, ऐसे वैसे का सफल नहीं करने देता हूं। जिनके दिल में कोई खोट है उनका सफल भी नहीं होता, इसलिए सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है। सच्चाई बाबा को बहुत भाती है, सच्चा दिल है वो देखता तो है, सच्चा दिल है, और इसी आधार पर सत्यनारायण की कथा बनी है। सत्यनारायण की कथा सुनी है, माताओं ने तो सुनी होगी, किसने किसने सुनी सत्यनारायण की कथा? अच्छा है, बहुत सारे लोग हैं, भाइयों ने भी सुनी है, हाथ उठाओ भाई। अच्छा आपने भी सुनी है, करते भी थे, वाह हमारे ब्राह्मण भी बैठे हैं, कथा करने वाले भी बैठे हैं। अब लीलावती कथा कलावती की कहानी, मैं एक जगह पर गया एक मंदिर के अंदर, तो वहां पर 15 युगल सत्यनारायण की कथा सुन रहे थे एक मंदिर में, और उस मंदिर का ही नाम था स्वामी सत्य स्वामी का स्वामी नारायण का ही मंदिर कुछ ऐसा नाम था। तो उस मंदिर में मैं जब गया वहां भट्टी रखी थी, तो मुझे ले गए तो मैंने पूछा कि ये क्या कथा है, तो उन्होंने यही बताई लीलावती कथावती वाली कहानी। तो मैं उस मंदिर को देख करके, सत्यनारायण स्वामी का मंदिर, तो सत्यनारायण की मूर्ति जो थी वो बिल्कुल ब्रह्मा बाबा से भेंट करती थी, उसकी मूछ सफेद थी और पहरवाइस उन्होंने देवताओं की पहनाई थी, लेकिन बिल्कुल व्यक्तिगत जैसे ब्रह्मा बाबा की मूर्ति थी। हमने कहा आप लोगों को पता है यही सत्यनारायण स्वामी है, ये सत्यनारायण स्वामी ब्रह्मा बाबा है। क्यों? इसने जब परीक्षा ली एक सेठ की, तो उसकी परीक्षा में कहते हैं वो जो सेठ जी थे बहुत सारा हीरा जो जवाहरा सोना चांदी भर के नाव से आ रहे थे, तो बूढ़े ब्राह्मण के रूप में उसकी परीक्षा लेने के लिए सत्यनारायण स्वामी प्रकट हो गए। लेकिन उसको बेचारे को पता नहीं था ये कौन है, समझा कोई बूढ़ा है, उसने पूछा इसके अंदर क्या है, तो कहता है इसमें तो लत्ता पत्ता है, इसमें तो कुछ नहीं है। तो उन्होंने कह दिया तथास्तु, है तथास्तु कहा तो क्या हो गया, जो कुछ उसके अंदर लाया था वो भर करके वो सब फिनिश हो गया, वही मिट्टी हो गई। लत्ता पत्ता हो गया, तो बड़ा पश्चाताप हुआ उसको। तो ये कहानी सुन करके मुझे प्रेरणा ये आई कि ये ब्राह्मण आत्माएं सच्चे दरबार के अंदर सच्ची हैं। अगर सत्यता नहीं है और कभी भूल से कह दिया मेरे पास कुछ नहीं है और बाबा के मुख से निकल गया तथास्तु, तो क्या होगा हैं? ध्यान रखना, ये बूढ़ा ब्राह्मण गुप्त रूप में बैठा हुआ है और कभी भी भूल से भी चाहे तन की शक्ति लगानी पड़े, चाहे धन की शक्ति लगानी चले, चाहे मन की शक्तियां लगानी पड़े, कभी नहीं कोई बाबा मेरे पास नहीं है, आपने जितना दिया उतना बहुत है, हम आपकी सेवा में लगाएंगे बढ़ जाएंगे। आज अगर तन लगेगा तो ये तन अपने आप शक्तिशाली बनेगा, उसकी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी। हम लोगों को आज तक बाबा ने इतनी आदत डाल दी है कोई काम के लिए किसी पर मुझे डिपेंड नहीं होना पड़ता है, इंडिपेंडेंट बना दिया। आज भोजन खत्म हो गया फटाफट गए अपना बना के खा लिया, किसी पर डिपेंड नहीं रहते, भाई भोजन खत्म हो गया तो भूखे बैठे हैं। एक युगल आता था, उसे मैंने अचानक पूछ दिया कि आप लोग सेवा में आया करो, एक आओ एक भले संभालो घर। तो कहता है, उसकी युगल कहती है, मेरे पति को खाना कौन खिलाएगा। हमने कहा अच्छा, आप इतने बंधन में बंधी हुई हो जो आप ही खाना खिलाओगे तो ये खाएगा क्या, ये अपने आप अपने हाथ का नहीं खा सकता बना करके। बोला इन्हें सीखा ही नहीं है। तो मैंने बोला भाई इतना डिपेंड रहोगे, कल ये बीमार पड़ गई कच हो गया तो आपको कौन खिलाएगा। बोला ये निकले तो मैं खा सकता हूं बना के, ये निकलती नहीं है। तो अगर कोई एक निकलना चाहे सेवा में तो कम से कम निकल के तो देखो, वो अपने आप सीख जाएगा बनाना, कच्चा पक्का बनाएगा अपने हाथ का खाएगा, उसको मस्ती चढ़ेगी, वाह कितना अच्छा है, कच्ची रोटी भी अच्छी लगती है। तो हमने कहा हिम्मत रखोगे तो बाबा मदद करेगा, हिम्मते बच्चे मददे बाप, ऐसे भगवान की मदद मिलती है क्या किसी को, बहाने तो अनेक हैं। तो हर कार्य बाबा के घर में, छोटे से छोटा कार्य हो या बड़े से बड़ा कार्य हो, ये बाबा का कार्य मेरा कार्य है। तन लगेगा शक्तिशाली बन जाएगा, आ जाएगी शक्ति, हम लोगों के अंदर इतनी शक्ति आ गई, बाबा ने सब कुछ कराया जो आज हम कहते हैं हमारा तन एकदम बाबा ने निरोगी बना दिया। सेवा यज्ञ की हड्डी हड्डी की झाड़ू लगाई है, बर्तन साफ किए है, धूप कपड़े धोए हैं, पानी गर्म पहुंचाए बाल्टियां, आज बाबा ने सब कुछ रिटर्न कर दिया है। मन की शक्तियां लगाई तो मन इतना अच्छा हो गया जो चंचलता करना बंद कर दिया। अगर कहते रहो मेरा योग नहीं लगता, योग नहीं लगता, मेहनत करते रहो, युद्ध करते रहो, सहज योग है और कहते मेहनत योग नहीं लगता, क्यों? तुमने मन से कोई शुभ भावना रख करके शक्तियों का दान ही नहीं किया। मन से शुभ चिंतन तो करो, शुभ भावनाएं तो रखो, दूसरों का कल्याण करने की भावनाएं रखो, आपका मन शक्तिशाली बन जाएगा। और मन शक्तिशाली बन जाएगा छोटे चंचलता बंद हो जाएगी, वो एकाग्र हो जाएगा, योग लग जाएगा। लेकिन सेवा करके दुआएं लेकर, जिसके पास दुआओं का स्टॉक है उसका योग सहज है, और जिसके पास दुआएं नहीं है, किसी की भी दुआएं नहीं है, बेचारा अकेले मेहनत कर रहा है, थक रहा है, सोचता योग तो लगता नहीं है, पढ़ाई तो बड़ी ऊंची है, क्या करूं कैसे करूं, मेहनत लगती है। तो अगर मेहनत मुक्त बनना है तो बाबा के यज्ञ के अंदर, इस यज्ञ में तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क जो आपके पास है, जितनी कलाएं हैं, जितनी विशेषताएं हैं, है सब के अंदर जो बीज है बो दो। बीज बोने का ये संगम का समय है। अगर खेती के समय, बीज बोने के समय कोई किसान बैठा हो और सोचने लगे पता नहीं बीज तो मेरे पास इतने हैं जो मैं अपने लिए पेट के लिए ही हैं, मैं खेत में अगर डाल के आ जाऊंगा तो मैं भूखा रह जाऊंगा, कैसे बोऊं, और बोने के समय ये सोच करके न बोए तो काटने के समय क्या करेगा, सब काटेंगे अपनी फसल देख करके खुश होंगे और बेचारा रोता रह जाएगा। कभी भी ये नहीं कहना कि मैं तो गरीब हूं, बीज बोने के लिए भी मेरे पास इतना नहीं है, मैं कैसे बोऊं। बाबा कहता अगर 10 पैसा भी है ना तो उसमें भी एक पैसा निकाल दूं, कम से कम एक बो दोगे तभी भी तुम्हारे को उसका रिटर्न मिल जाएगा, एक बीज का भी 1000 हो जाता है। इसलिए बीज बोने के समय में कभी भी नहीं कहना ये शक्ति नहीं है, ये धन नहीं है, ये विशेषता नहीं है, जो है जितनी है, अगर संगम पर हमने इस कर्म रूपी क्षेत्र पर बीज बो दिया तो वो कर्म की खेती हमको आधा कल्प तो क्या मैं कहता हूँ 84 जन्म के लिए बाबा के रिकॉर्ड में जमा हो जाएगी। तो जिस प्रकार की शक्ति जिसके पास है, जो विशेषता है, जो कला है, ये यज्ञ पिता ने यज्ञ रचा है, इस यज्ञ के अंदर सब सफल करो। और जो कमी और कमजोरी है, जो कोई ऐसे सूक्ष्म संस्कार हैं जो आपके जीवन में रुकावट डाल रहे हैं, विघ्न रूप हैं, संकल्प करो बाबा ये स्वाहा, ये यज्ञ ऐसा है अगर इसके अंदर स्वाहा कर दोगे भस्म हो जाएगा, फिर नहीं आएगा आपके पास रिटर्न। तो आप सभी बाबा के यज्ञ में आए हैं, मधुबन बेहद का यज्ञ है, और इस यज्ञ के अंदर जो चीज आपको लगती हो कि ये मेरे मार्ग के अंदर रुकावट डाल रही है, आज लिखना गुप्त रीति से, कोई को बोलने की जरूरत नहीं है, और बाबा की गुप्त भंडारी है, भंडारी में डाल देना, कोई पढ़ेगा नहीं आपका, वो अपने आप जला देगा, बाबा भस्म कर देगा। तो ये यज्ञ है, इसमें जो कमी है, कमजोरी है, संस्कार है, स्वभाव, कोई भी आदत है जो पुरानी है, जो आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, संकल्प करके बाबा के यहाँ स्वाहा कर दो, यज्ञ में स्वाहा हो जाएगी, और आपको यज्ञ बिल्कुल स्वच्छ पवित्र बना करके मन इच्छित फल देकर आधा कल्प के लिए तो एकदम संपूर्ण काया, पावन काया मिलेगी, धन धान्य संपन्न बन जाएंगे। और बाबा कहता आधा कल्प ही क्यों कहते हो, पूरे कल्प के लिए मैं गारंटी ले लूंगा, ठीक है। तो ऐसा बन करके सबको दिखाना है, समय हो गया इसलिए हम स्टॉप करते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। आदरणीय भ्राता राजू भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, तालियां बजा सकते हैं। आपने बहुत ही हमें अपने अनुभवों से लाभान्वित तो किया ही, लेकिन आप जब यज्ञ का बता रहे थे भाई साहब, तो हम सब उस यज्ञ में सैर कर रहे थे, राइट, उसमें सब सैर करके आए हैं, और बहुत सारी प्रेरणाएं भी मिली हैं। जो कुछ कमियां थी, जो कुछ सोच रहे थे हम कैसे दे अपना तन मन धन, तो भाई साहब ने बता दिया है। अगर हम झूठ बोलते हैं या कुछ कमी का वो करते हैं तो वही हो जाएगा, तथास्तु हो जाएगा। इसीलिए सच्चे दिल पर साहबरा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार ताली।
करते।